ये आकाशवाणी है। अब आप अंजलि से समाचार सुनिए। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर अभी मत विभाजन चल रहा है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना है, जिसमें विरासत स्थलों की सुरक्षा और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि वक्फ बोर्डों के संपत्तियों से संबंधित है और इसका मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार वक्फ बोर्डों को समावेशी और धर्मनिरपेक्ष बनाना चाहती है। उन्होंने बहस पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है और वो इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि बहुसंख्यक पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पर करीब 12 घंटे चली बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रिजिजू ने कहा कि पारसी जैसे छोटे अल्पसंख्यक समुदाय भी भारत में सुरक्षित हैं और यहां सभी अल्पसंख्यक गर्व के साथ रहते हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने बहस में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कोई भी गैर मुस्लिम वक्फ में नहीं आएगा।
सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान, मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकाल।
इस बीच विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कई मुद्दों पर अपनी विफलता छुपाने के लिए ये विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक मुसलमानों के हितों को नुकसान पहुंचाएगा। विधेयक के पक्ष में सांसदों ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। बिहार और हरियाणा सहित देश के कई राज्यों, संगठन और लोग वक्फ संशोधन विधेयक का स्वागत कर रहे हैं। बिहार में पसमांदा मुस्लिम समाज के संयोजक डॉ. फिरोज मंसूरी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह विधेयक पसमांदा मुसलमानों के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हरियाणा हज कमेटी के पूर्व मीडिया कोऑर्डिनेटर खुर्शीद आलम ने कहा कि वक्फ बिल से सिर्फ उन लोगों को परेशानी हो रही है जो खुद वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए हुए हैं। संसद ने आव्रजन और विदेशी नागरिक विधेयक 2025 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे स्वीकृति दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी लोगों के आव्रजन, प्रवेश और ठहरने को विनियमित करना और आव्रजन कानूनों का आधुनिकीकरण करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कानूनों में होने वाले दोहराव को कम करना, संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना और डाटा प्रबंधन तथा सत्यापन में होने वाली कठिनाई को दूर करना है। उन्होंने कहा कि विधेयक भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के सभी नए रिकॉर्ड को बनाए रखने और प्रबंधन में सहायता करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री की थाईलैंड की तीसरी यात्रा है। प्रधानमंत्री कल बैंकॉक में थाईलैंड के प्रधानमंत्री बेतोंगतार्न शिनावात्रा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनूर कुमार दिसानायक के निमंत्रण पर 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका जाएंगे। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1,681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ दिया है। ये पहले वित्त वर्ष 2023-24 में 1,472 इंजनों के निर्माण की तुलना में 19% की वृद्धि है। ये रिकॉर्ड निर्माण देश में रेल इंजन निर्माण के लिए अब तक का सबसे अधिक है। असम में राभा हसोंग स्वायत्त परिषद के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। राभा हसोंग स्वायत्त परिषद के अंतर्गत कामरूप और गोवालपारा जिलों में व्याप्त 36% निर्वाचन क्षेत्रों में से 33 में मतदान हुआ। आईपीएल 2020 क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हरा दिया है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने 17 ओवर और 5 गेंदों में 2 विकेट खोकर 170 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस की ओर से जोस बटलर ने 39 गेंदों में सर्वाधिक नाबाद 73 रन की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।